स्वामी के आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग मनुष्य की हैसियत से पैदा हुए हैं और भी बहुत से जीव यहां अपना जीवन यापन करते हैं और हम भी अपना जीवन यहां जीते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा हमें ये फैसिलिटी ज़्यादा मिली है कि हम अपने जीवन के कल्याण का विचार कर सकते हैं और इतना ही नहीं, हम चाहें तो अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी भी सकते हैं। ये जो एक हमारे पास अतिरिक्त योग्यता है अपने जीवन को अच्छा बनाने की, अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने की, उस योग्यता का लाभ मन को उठाना चाहिए। हमारे जीवन में धर्म हमारी जो भी मदद करता हो, पर एक मदद जरूर करता है कि वो हमें जीने का एक बेहतर तरीका बताता है। हम किस तरह अपने जीवन को जिए, कैसे हम अपने जीवन को अंत तक ले जाएं और कैसे हम इस जीवन को जीते जीते और एक ऐसे जीवन को प्राप्त कर लें जिसमें फिर जन्म मरण की पीड़ा नहीं है, संसार के दुख नहीं है। यदि इस विचार के साथ हम अपने जीवन को एक दिशा दें तो वैसी संभावना और वैसी योग्यता, पॉसिबिलिटी भी और प्रोबेबिलिटी भी दोनों हमारे भीतर हैं। लेकिन अब अपने जीवन को हम अच्छा जीने के लिए क्या विचार करें, क्या हम अपने जीवन में चेंजेस लाएं, कैसा कुछ करें, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। हम 24 घंटे कोई ना कोई काम तो करते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कुछ ना करता हो। देखिए, खाली बैठना भी कुछ करना है, ऐसा नहीं समझे। हाँ, कुछ सोचना भी कुछ करना है, कुछ कहना भी कुछ करना है, और हाथों से पैरों से करना तो करना है ही। हम अपने मन वचन काय से कुछ ना कुछ निरंतर करते ही रहते हैं, लेकिन हम किस तरह करें ये हम नहीं जानते। हमारे साथ मुश्किल ये है कि हमारी आदत बहुत वर्षों से संस्कारित होने की वजह से थोड़ी सी बिगड़ गई है, बिगड़ इनक थुम गई है कि जैसे अपन थिएटर में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि एक सफेद एकदम बढ़िया पर्दा लगा हुआ है, तो अपना मन ऊब जाता है कि क्या सफेद पर्दा देखना लगातार। तो फिर अच्छा, और उजाला भी रहता थिएटर में, जब वो सफेद पर्दा दिखता तब उजाला रहता, लेकिन तब मजा नहीं आता। ऐसा किसको मजा आएगा कि सफेद पर्दा दिख रहा है और लाइट वाइट जली हुई है, क्या यहां पर थिएटर में आए अपन। फिर थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होता है और सफेद पर्दे पर्दे पर विभिन्न चित्र आना शुरू हो जाते हैं। कोई चित्र मन को हंसाने वाला, कोई चित्र मन को रुलाने वाला, कोई चित्र मन को मलिन करने वाला, कोई चित्र मन को निर्मल करने वाला। जाने कितने चित्र आते हैं, फिर हमारा मन लग जाता है। बस ऐसे ही हम लोगों के साथ है कि हमारी अपनी जो नेचुरलिटी है वो हमको पसंद नहीं आती। जब मोह और राग द्वेष का अंधेरा छा जाता है, फिर नाना प्रकार के चित्र हर्ष विषाद के दिखाई देने लगते हैं और हम उसी में चमत्कृत होकर अपने सारे कर्म इसी अपेक्षा से करते हैं कि इसमें सुख मिलेगा और इसको करने से मैं दुख से बच जाऊंगा। बस इतना ही है। अगर देखा जाए तो इस कर्म को करने पर मुझे सुख मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ये बात की बात है, पर मैं कर रहा हूं कि मुझे सुख मिलेगा ही, और ये कर्म इसलिए करता हूं ताकि मुझे दुख ना भोगना पड़े। इस तरह हम पूरा जीवन बिता देते हैं सुख की आकांक्षा में और दुख से बचने के लिए। विभेति मृत्योर् न ततोस्ति मोक्षो, नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभ, तथापि वालो भय काम अवश्यो व्रथा स्वयं तप्यत इति अवादी। भगवान आपने ठीक ही कहा है, यहां पर हम सब संसार में कामना करते हैं मोक्ष की और भयभीत होते हैं संसार के दुखों से, लेकिन अकेले कामना करने से मोक्ष या मुक्ति मिल गई होती, सच्चा सुख मिल गया होता तो आज तक मिल जाता, और अकेले भयभीत होने से कोई दुख से बच जाता तो आज तक तो सभी बच गए होते। अकेले भयभीत होने से दुखों से नहीं बचा जा सकता, और अकेले कामना करने से वो सुख नहीं पाया जा सकता। करना पड़ेगा उस दिशा में प्रयास, लेकिन प्रयास किस तरह करना ये हमें सीखना पड़ेगा। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, पर दिशा कौन सी होगी, क्या सोच होगा, कर्म करने का की दिशा कौन सी है, कर्म करने का सोच कौन सा है, बस इस पे निर्भर करता है हमारे जीवन का बेहतर होना और इस संसार के सुख दुख से पार होना। क्या हुआ, एक बार एक ट्रेन में एक साधु बाबा सफर कर रहे थे। वो वैसे वाले साधु बाबा होंगे जो कि सफर करते हैं, नहीं तो आप समझो कि दिगंबर साधु, तो वो तो संभव ही नहीं है कि ट्रेन में वो यात्रा करें। तो वैसे वाले बाबा जी थे और उनके शिष्य भी थे जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे, और अचानक जो है वो जो क्या बोलते हैं उसको, गार्ड बोलते गाड़ी में, हाँ टीटी बोल दो जो भी बोल रहा हूं, तो वो आ गया और वो बाबा जी को पहचान गया कि अरे ये तुम्हारे गुरु जी है। अब बाबा जी के साथ बहुत सारा सामान था और बाबा जी परेशान थे, उनके जो भक्तगण थे वो उसकी व्यवस्था बना रहे थे कि टिकट विकेट के साथ साथ लगेज भी बनवाना पड़ेगी, इतना सामान लेके जा रहे हैं। तो वो जैसे ही वो टीटी या की गार्ड आया और उसने कहा, अरे आप काहे को चिंता कर रहे हैं, लखनऊ तक तो मैं ही जा रहा हूं और आपको भी वहीं तक जाना है, अपने मन से उसने कहा, आप परेशान मत हो, कोई लगेज बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सब आराम से उतार दूंगा। बाबा जी सचमुच बाबा जी थे, उन्होंने कहा, सुनो तुम्हें कैसे मालूम कि मैं वहीं तक जा रहा हूं, तो कोई बात नहीं आप उससे आगे भी जाएंगे तब भी डोंट वरी, हम वहां अपने परिचित किसी गार्ड को सौंप देंगे, वो आगे आप जाएंगे तो वहां तक उतार देगा। तो बाबा जी ने कहा कि सुनो, उससे भी आगे जाना हो अगर, तो उससे भी आगे जाना हो, हम वहां से भी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा जब दूर जाना हो, अब बड़ी मुश्किल की, बाबा जी आप जा कहाँ रहे हो? तो उन्होंने कहा सुनो, ये तो छोटी मोटी यात्रा है, मैं तो निकला हूं संसार से पार होने की यात्रा पर, कहां कहां तक तुम जाकर के मेरे सामान का हिसाब बनाओगे? मैं अगर यहीं से अपने कर्मों को ठीक नहीं करूंगा तो आगे जाकर के मेरी यात्रा में मुझे कहीं ना कहीं परेशानी तो आएगी ही आएगी। एक जरा सी यात्रा के लिए इतनी तैयारी हमें करनी पड़ती है, तो भैया इस संसार से पार होने के लिए कैसे जीवन जीना, कैसे जीवन की यात्रा करना, इसकी तैयारी नहीं करना पड़ेगी? करना तो पड़ेगी, लेकिन जिस तरह की तैयारी हमारी है उस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। हमने विचार किया कि हमारी तैयारी तो सिर्फ इतनी है कि हमारी यात्रा में हमें सुख ज्यादा मिले और दुख से हम बचते रहें, और सुख का और दुख का हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि जो चीज हमारे मन को अच्छी लगे वो सुख देने वाली, जो चीज हमारे मन को बुरी लगे वो हमें दुख देने वाली, इतना ही हमारा सुख दुख का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस तरह की यात्रा तो हम अनादिकाल से चले करते चले आ रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते चले जाएंगे, लेकिन ऐसी यात्रा से हमें कभी न सच्चा सुख मिला न दुख से हम कभी बच पाए, तब क्या करें? तीन तरह के कर्म होते हैं। एक काम कर्म है जो किसी कामना से प्रेरित होकर के हम करते हैं, एक निषिद्ध कर्म है जो हमें मालूम है कि जिनके करने से दुख होगा, और एक है स्वकर्म। इनमें से हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए। हम में से अधिकांश काम में कर्म करते हैं, अपनी कामनाओं से प्रेरित होकर के, अपने लाभ हानि से प्रेरित होकर के, वो भी लाभ हानि बहुत सांसारिक, दो पैसे की बरकत जिसमें हो वो धंधा कर लो। ये जो हमारा लाभ हानि का सोच और विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का सोच, इनसे प्रेरित होकर हम काम कर्म करते हैं, तब फिर हम निषिद्ध कर्मों को भी करना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे पैसे की लालसा है तब फिर वो पैसा डाका डालने और चोरी करने से भी आता है तो ओके, क्योंकि मैंने काम कर्म को प्रमुखता दे दी है, मेरी अपनी कामनाओं की जिससे पूर्ति होती है मैं वो कर्म करता हूं, तब तो फिर मैं उसमें लाभ हानि देखूंगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति देखूंगा। और आज वर्तमान में अगर हम देखें तो अधिकांश लोगों के साथ यही है, जो भी कर्म हम करते हैं भगवान के पास आकर के अगर हम हाथ जोड़ के भी खड़े होते हैं तब भी कामनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती, तब भी वे हमें प्रेरित करती हैं कि मांग लो, चूक मत जाना, इतनी दूर आए, अरे ऐसे कैसे खाली हाथ, वो बाबा गया ऐसे, अरे कोई नहीं गया आज तक, लेकिन बिना मांगे नहीं मिला किसी को, मांगो। हमारी कामनाएं प्रेरित करती हैं, वे कभी हमें ये नहीं बताती हैं कि ये वो जगह है जहां बिना मांगे मिल जाता है। हम पूजा पाठ ध्यान चिंतन मनन भी करते हैं तब भी हम उसमें अपनी कामनाओं से प्रेरित होकर के करते हैं, तो हम अपने कर्म को संक्लेश का ही कारण बना लेते हैं, क्योंकि भैया कामना करने से कोई कर्म किया गया हो वो पूर्ण हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है। कामना करने अकेले से कर्म की पूर्णता नहीं हो जाती, कामना के साथ साथ उस दिशा में प्रयत्न भी जरूरी है, लेकिन मैं प्रयत्न तो कुछ करता नहीं, मैं तो सिर्फ कामना करता हूं कि मेरे उस फल की मुझे प्राप्ति हो जाए, मुझे बिना पुरुषार्थ के फल की प्राप्ति हो जाए। ऐसी जो फल में आसक्ति है वही हमारे कर्म को बहुत मलिन कर देती है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों को फल की आसक्ति और कामना से मलिन करता है वो कितना भी कर्म करता रहे अपने जीवन में कभी वो बेहतर ढंग से नहीं जी सकता, अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकता। कभी विचार करना इस चीज को, एक मां भोजन बना रही है, कर्म कर रही है, लेकिन अगर इस कामना से कि मुझे तो लोगों के बीच मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूं ऐसा यश मिलेगा, तो भी अपने रोटी बनाने के काम को कर सकती है, और ये सोच करके कि मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, परिवार के जन सब इसको खाकर संतुष्ट हों और सब होशियार हों, अपने जीवन का कल्याण करें, इसके लिए मैं भोजन बनाती हूं। देखिएगा, दोनों में बहुत फर्क है। एक में परोपकार की भावना है और एक में अपने अपने किसी स्वार्थवश उसी कर्म को हम कर रहे हैं। काम में कर्म में भी दो तरह की चीजें हैं, एक अपने स्वार्थ और अपने पंचिंद्री के विषय भोगों की पूर्ति के लिए हम कर्म कर सकते हैं, एक दूसरे के उपकार के लिए। और तीसरा और अगर अपन इसमें जोड़ लें, मैं जो भी करूं स्वपर कल्याण की भावना से करूं, तब फिर वो मेरा कर्म मेरे जीवन को जरूर बेहतर बनाएगा। निषिद्ध कर्म अपने आप दूर हो जाएंगे। चोरी करना निषिद्ध है, लेकिन जब कामना जोर मारती है तो चोरी भी कर लेता। झूठ बोलना निषिद्ध कर्म है, लेकिन जब मुझे लाभ दिखाई देता है मैं झूठ भी बोल लेता हूं। हिंसा करना निषिद्ध कर्म है, लेकिन मेरा काम बनता हो तो मैं दूसरे को तकलीफ पहुंचा के भी अपना काम बना लेता हूं। बस इतना ही हमें अपने कर्म पर अंकुश रखना है। कर्म तो करना है भैया, 24 घंटे कोई ना कोई काम तो लगा ही हुआ है, लेकिन उस कर्म को कैसे करना है, जीना और कर्म करना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम जी रहे हैं, कुछ ना कुछ करते हुए जी रहे हैं, इसलिए अगर जीने को बेहतर बनाना है तो करने को बेहतर बना ले। हमारा कर्म बेहतर हो तो हमारा जीवन भी बेहतर होगा। कर्म बेहतर के मायने यही है कि हम पूजा पाठ करें। 24 घंटे पूजा पाठ कर सकते क्या? क्योंकि बेहतर कर्म तो वही समझ में आता है, माला फेरें, स्वाध्याय करें, पूजा करें। 24 घंटे कर सकते क्या? जब हम 24 घंटे इस तरह का कर्म नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम जो करते हैं उसको क्यों ना बेहतर बना लें। बस इसी का तो अपन को उपाय कर लेना। रोटी भी बना रहे हैं और दुकान भी चला रहे हैं, तब भी उस कर्म को क्या मैं काम कर्म से ऊपर उठ करके स्वकर्म बना सकता हूं? इतना ही अगर समझ में आ जावे तब आनंद से हम अपने सारे कार्य करते हुए भी अपना कल्याण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अपने आप वे कर्म हमसे नहीं होंगे जिनमें कि हमारा और दूसरे का अहित होता है, अकल्याण होता है। कर्म जितना परोपकार की भावना से किया जाएगा, सपर कल्याण की भावना से किया जाएगा, उतना ही कर्म जीवन को बेहतर बनाएगा। एक कमरे में झाड़ू भी लगा रहे हैं तब भी भावना क्या है? जैसे कमरा पवित्र मुझे पसंद है, ऐसे ही मुझे मन का भी कचरा निकाल के बाहर फेंकना है। इस शिक्षा को पाने के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूं। बताइए, हम बहुत छोटे छोटे से कामों में भी अपनी भावनाओं को, अगर भैया काम कोई भी छोटा बड़ा काहे से होता मालूम? उस पे वजन वेटेज काहे से आती है? काम में भावना से आती ना। आप किसी के लिए कितना ही बड़ा काम कर दो लेकिन आपकी भावना पवित्र ना हो तो बताइएगा, वो किया गया काम उसको कोई संतोष देगा क्या? नहीं दे सकता। और छोटा सा काम भी बहुत बड़ी भावना से किया है तो वो काम छोटा नहीं कहलाता, वो बहुत बड़ा हो जाता। उन दिनों की बात है जब नेहरू जी हुआ करते थे दिल्ली में, एक गांव का व्यक्ति जो कि रंग बिरंगी रस्सियों से पलंग बनाता था, खाट बनाता था, उसने बनाई, छोटी सी खाट बनाई दो लोगों के बैठने लायक, सिर पर रख करके तपती धूप में पहुंचता है नेहरू जी के आवास पर, लेकिन उसे कौन भीतर जाने देगा? इतना छोटा सा काम, बड़े बड़े काम लेकर के आओ तब बड़े लोगों से मिल सकते हो, है ना? सामान्य रूप से तो यही देखने में आता है। लेकिन उसने बहुत बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे एक बार नेहरू जी से मिलने देव, उन तक मेरी खबर भेज दो कि मैं एक गांव का मजदूर, उन्हें कुछ भेंट करना चाहता हूं। अब बताइए, ऐसी खराब सी चीज भेंट करने वो भी ऐसे चले आ रहे हो? अरे कुछ सोने होने की कोई चीज होती तो जरा भीतर तक खबर देते, ये क्या खाट लेके आए भेंट करने। फिर भी जब वो नहीं माना, सारा दिन वहां बाहर पड़ा रहा, शाम होने को थी, कोई खबर भीतर देने वाला नहीं था, लेकिन समय हुआ नेहरू जी के बाहर आने का। वे बाहर आए, उसने हाथ जोड़ के कहा कि मेरी भी एक विनती सुन ले। बड़ा वो है जो छोटे के सामने झुक सके, मेरे ख्याल से तो नहीं, तो ऐसे तो बड़े बड़े खजूर के पेड़ भी हैं जिनमें फल ही नहीं लगते हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक सेंटेंस तो निकल गया मेरे मुंह से कि बड़ा वो है जो छोटे के सामने झुक सके, लेकिन बहुत मुश्किल है बाबा, जिंदगी निकल जाएगी इसमें। हां, कोई नहीं झुकना चाहता। अब नेहरू जी ने कहा कि क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, बस इतनी विनंती है कि मेरी एक छोटी सी भेंट स्वीकार कर लो, ये खाट आपके लिए बना करके लाया हूं, है तो बहुत छोटी सी, मेरे पास और देने के लिए कुछ नहीं। बहुत गदगद होकर के कहते हैं कि नेहरू जी ने उसे अपने हाथ से लिया, और इतने ही नहीं, उस जमाने में अपने फोटो पर अपने हाथ से दस्तखत करके दे देना राष्ट्रपति के पुरस्कार से बड़ा था। हाँ, सो अपने हाथ से फोटो पर दस्तखत करके जवाहरलाल और उस एक छोटे से व्यक्ति के हाथ में दे दिया। बताइएगा, वो जो खाट बनाने का कर्म था वो छोटा था कि बड़ा था? बहुत बड़ा था। कर्म छोटा और बड़ा हमारी भावनाओं से होता। एक छोटा सा पांखुड़ी फूल की और मुंह में दबाए चला जा रहा है मेंढक, कर्म कितना सा है? छोटा सा, लेकिन कैसे बड़ा हो गया भैया? भावना की निर्मलता से, भावना कामना में ना बदल जाए, स्वार्थ पूर्ति की भावना ना हो, आत्म कल्याण और पर कल्याण की भावना से, ऐसी भावना से प्रेरित होकर के हम सारे कर्म कर सकते हैं। फिर अपने आप हमें डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा कर्म करना और कौन सा नहीं करना। आत्म कल्याण और पर कल्याण की भावना से यदि कर्म किया जाए तो जो कर्म करने योग्य नहीं है वो अपने आप छूट जाएगा, जो करने योग्य है वही होगा, और जो करने योग्य है वो भी पूरे वजनदारी के साथ होगा। इतना सा छोटा सा अपने मन में ऐसा एक विचार अपन करें तो संभव है। ऐसा कर्म ही हार्दिक है, ऐसा कर्म ही सहज कर्म है जो सपर कल्याण की भावना से किया जाता है, जिसमें कि अहंकार नहीं है, जिसमें कि फल पाने की कामना नहीं है, अपनी स्वार्थ पूर्ति नहीं है। सब कर्मों को ऐसा बना सकते हैं, सब कर्मों को। मैं आपसे कह रहा हूं कि कपड़े धोने से लेकर झाड़ू लगाने और रोटी बनाने और ग्राहक को मेंटेन करने तक के कर्म, सब छोटे से छोटे कर्म, पूजा और स्वाध्याय और ये कर्म तो है ही, लेकिन उन कर्मों को भी हम अपने भावों के द्वारा मलिन कर सकते हैं, जो कर्म बहुत अच्छे माने जाते हैं। खड़े हैं पूजा करने रावण की तरह, हां शांतिनाथाय नमः, रामस्य मृत्युर्भवेत्, राम की मृत्यु हो शांतिनाथाय नमः। ऐसा भी संभव है, ऐसी पूजा भी संभव है। अगर रावण ने जितनी मेहनत, जितना कंसंट्रेशन सिद्ध करी थी, अगर अपने परिणाम निर्मल करता तो आचार्य भगवंतों ने, कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखी कि उतने से उसका उसी भाव में मोक्ष हो जाए। बताइए, ये है कर्म के पीछे सफर कल्याण की भावना, ये है हार्दिक और सहज कर्म। जैसे कि एक मां अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, लेकिन कभी किसी मां ने किसी डायरी में यह नहीं लिखा होगा
कि सुबह से शाम तक इसने इतने कपड़े गंदे किए, मैंने इतने धोए, इसका इतना पैसा लिखा, इतनी सारी मां लोग बैठी, लिखा हो किसी ने तो डायरी बताना, मैंने इसको 9 महीने तक अपने पेट में रखा, इसने मेरे लिए इतने कष्ट दिए, ऐसा कभी किसी माने कहा? किसी ने नहीं। मैंने इसको दूध पिला के बड़ा किया, इसका इतना पैसा। अगर एक नर्स रखी होती तो वो जरूर कह सकती थी कि इतने सुबह से शाम तक कपड़े धोए, इतनी बार ये रोया तो उसको टहलाया, इसका इतना पैसा, इसका इतना पैसा। नर्स के लिए वही कर्म काम में कर्म है, क्योंकि 2 पैसे मिलेंगे, और मां के लिए वही कर्म सफर कल्याण की भावना से किया हुआ, हालांकि मोह से ग्रसित होके करती है, अगर थोड़ा सुधार लेवे तो वही सफर कल्याण का हो सकता है। मोह से ग्रसित होके करती, मेरा बेटा है, और ऐसा ही अगर दूसरे के बेटे के प्रति भी भाव आ जावे, हो गया काम, या कि ये भाव आ जावे कि ये बड़ा होकर के अपना कल्याण करेगा, मुनि बनेगा, इसलिए पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएगा और मुझे बाद में सेवा करेगा, इतना भर विचार छोड़ दो, इतना भर विचार उसके साथ जोड़ लो कि बड़ा तो कर रही हूं इसलिए कि बड़ा होके समझदार हो जाएगा, अपना कल्याण कर लेगा, आया है मेरे माध्यम से इस संसार में, मैं तो नहीं कर पाई, अपना कल्याण ये कर लेगा। इतनी सी भावना बदलनी है और बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना है, बने नहीं बने वो उसकी, वो जाने मुनि, लेकिन हमारी तो भावना ये है। आपने अपने उस मां के कर्तव्य को, मां के दायित्व को इतना बड़ा कर लिया, अपने आत्म कल्याण का उपाय कर लिया। मैं आपसे कहना यह चाहिए, हम कर्म करें लेकिन उनको एक अच्छी दिशा दें और ठीक ठीक ढंग से उनको करें, तो कोई वजह नहीं है कि वे कर्म हमें कर्मों से मुक्त करने में मदद ना करें, कर्म ही हमें कर्मों से मुक्त होने में मदद कर सकते। बस इतना ही है, इन कर्मों में हम देखें कि सफर कल्याण की भावना कितनी हम भर सकते हैं, जितनी हम सफर कल्याण की, जहां जहां, मैंने तो कुछ उदाहरण दिए आपके लिए, जहां जहां आपको लगे वहां आप अपनी दिशा बदल लें और देखें कि हां इस कर्म को ऐसे भी किया जा सकता है। एक और उदाहरण दे दूं मैं आपको, शायद और बात साफ हो जाए। पूजा करने खड़े हैं, एक व्यक्ति और आ गए, अपन खत्म करने वाले थे और वो आगे, उन्होंने कहा अरे एक और कर लो हमारे साथ, अब कर रहे हैं पूजा, कहां से ये आ गए और इनके साथ में एक कन्ना पड़ी, 20 मिनट और लग जाएंगे। और वो में रोज प्रार्थना होती थी, प्रार्थना क्या होती थी, एक दूसरे के प्रति भावों की निर्मलता ही प्रार्थना है, भाव तो एक दूसरे के प्रति गंदे हैं, और भगवान के सामने बैठ करके और बड़ी बढ़िया सी प्रार्थना गाली, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भावना जितनी निर्मल होगी प्राणी मात्र के प्रति, भगवान के सामने की गई प्रार्थना उतनी ही बढ़िया होगी, और भावना तो है कलुष सबके प्रति, और खड़े हैं भगवान के सामने और प्रार्थना कर रहे हैं बड़ी ऊंची, तब भी कुछ नहीं ज्यादा होता। गांधी जी प्रार्थना शुरू करें इसके पहले उनका ध्यान चला गया, क्योंकि वो सत्याग्रह के लिए बहुत दूर दूर से गांव से किसान आए थे, उसमें एक किसान था जिसको कि कोढ़ हो गया था, बड़ा दुखी था, लेकिन सत्याग्रह में शामिल हुआ था बापू के साथ, उनकी एक आवाज पर। जब प्रार्थना सभा लग गई शाम 5 बजे, लेकिन वो नहीं दिखा बापू को, अरे बापू ने कहा कहां है वो, आ जाएगा आ जाएगा। और लोगों ने कहा अरे ऐसे कैसे, नहीं आप तो प्रार्थना शुरू करिएगा, जब वो आ जाएगा तो शामिल हो जाएगा। अपन भी तो ऐसे ही करते हैं, नहीं करते हैं, अपना काम सद जावे बाकी दुनिया जावे चाहे जहां जावे है। अब वो शब्द ही नहीं आया हमारे मुंह में कि अपन क्या कहते हैं उसको, आप कहते होंगे है, समझ तो सब गए कि हमारा सब बन जावे और बाकी सब दुनिया का जो हो तो हो, हमें क्या कर। लेकिन उनके मन में ऐसा नहीं आया, प्रार्थना तो तभी होगी जबकि वह जो सत्याग्रही है कोड़ी भले ही है वो भी शामिल होगा, तभी भगवान की प्रार्थना होगी। बताइए
बापू खुद लालटेन लेकर के अंधेरे में ढूंढने जा रहे हैं, 50 लोग और साथ में हैं, कि ये भी अजीब ही आदमी है, ये महापुरुष महापुरुष ऐसे ही होते हैं, इनके झगड़े में नहीं पड़ना, गड़बड़ रहते हैं मामला, नहीं ऐसा लगता है कई बार, लेकिन सही रहता है मामला इनका। गए ये घंटे डेढ़ घंटे में और उस जगह पर पहुंच पाए जहां की वो सारे सत्याग्रहियों के साथ चला आता था, लेकिन थक गया था तो पेड़ के नीचे वहीं बैठा था, चला भी नहीं जाता, वैसे भी कोढ़ होने से शरीर में बहुत पीड़ा थी। अपन तो नाक मुंह सिकोड़ेंगे, करेंगे बात जरूर सत्येषु मैत्रीम की, लेकिन ऐसा अवसर आने पर पता नहीं कहां चली जाती, सब गायब हो जाती अपनी भावनाएं, मन जल्दी खट्टा हो जाता है, मलिन हो जाता है। भैया कर्म जितने भी करें उनमें बस कोशिश ये बनी रहे, हो तो जाता है मलिन, लेकिन जल्दी से उसको साफ कर ले। मलिन होता है कामनाओं से और साफ होता है सफर कल्याण की भावनाओं से। पहुंचे वहां, अरे तुम यहां क्यों बैठे हो, बापू आप आ गए, वो तो गदगद हो गया, ये लोग आकर आ जाते मेरे से चला नहीं गया, भूख भी बहुत लगी थी इसलिए देर हो गई। बापू साथ में लेकर के उसे आ रहे हैं और इस सारी प्रक्रिया में 9 बज गए, 5 बजे की प्रार्थना 9 बजे रात को शुरू हुई, बापू प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग दोहरा रहे हैं, लेकिन पीछे बैठा वो कोड़ी सत्याग्रही आंसू बहते चले जाते हैं, ताली बजाता हुआ गदगद होकर के प्रार्थना कर रहा है। बताइएगा ये कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है या कि हम अपनी प्रार्थना पहले कर लेते वो ज्यादा श्रेष्ठ था, इस प्रार्थना में ज्यादा निर्मल है मन या कि हम बिना उसको लाए हुए उसकी बिना चिंता किए हुए अगर इस प्रार्थना को कर लेते तो वो ज्यादा बेटर था। बस इसी से डिसाइड हो जाता है कि हम जो भी कर्म करें मन की निर्मलता के साथ सफर कल्याण की भावना के साथ करें तो हमारे सारे कर्म हमारे कर्मों को काटने में मदद करेंगे, हमारे जीवन को अच्छा बनाने में मदद करेंगे। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने कर्मों को बेहतर बनाएं जिससे हमारा जीवन भी बेहतर बने, अपन नमोकार करें जिससे कि हमारा मन थोड़ी देर को ही सही निर्मल तो हो और वो निर्मलता धीरे धीरे निरंतर और बढ़ती चली जाए। इसी भावना
मंगलम।
पन्नतो धम्म मंगलम शरणं पवज्जामि
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि नित्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको पानी शिव काली है
ठीक। हाँ, मज्जा कहलाती है। उसके भीतर रहने वाला जो लिक्विड है वो जैसे अलग नहीं होती ऐसे ही। और उदाहरण दिए पांडव आदि बत, पांच पांडव तपस्या में लीन बैठे हैं, तीन बड़े भैया बिल्कुल ध्यान में लीन है और दो छोटे भैया के मन में आ जाता है कि हम लोग तो अभी यंग हैं और हमारे ऊपर सबके ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग आया तो हम तो सहन कर लेंगे, भैया कैसे सहन करेंगे। इतना सा विकल्प आया था, तीन भैया का तो मोक्ष हो गया निर्विकल्प होकर के, जरा सा अनुराग, लेकिन वो अनुराग बुरा नहीं है, सर्वार सिद्धि वे भी गए, आगामी जीवन में चले जाएंगे मोक्ष। कहने वाले इसका ऐसा इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं कि देखो तो इनको विकल्प हो गए आखिरी समय, वो विकल्प की वजह से इनको मोक्ष रुक गो। ऐसा कहना चाहो तो ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि तीन भाई सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये जो अनुराग है, भले ही हमारा थोड़ा सा हम पीछे रह गए हैं, लेकिन ये किस बात की सूचना है? ये वात्सल्य की सूचना है।
वात्सल्य का उदाहरण देखना हो तो विष्णु कुमार मुनि महाराज की तरफ ध्यान चला जाना चाहिए कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि महाराज के उपसर्ग को दूर करने के लिए स्वयं मुनि पद छोड़ करके और बटुक ब्राह्मण का वेश धारण करके उपसर्ग दूर होने पर पुनः प्रायश्चित लेकर के अपने मुनि मार्ग में स्थित होकर के अपना कल्याण किया। नहीं छोड़ते, क्या जरूरत थी, मैं तो मुनि हूं, अब मुझे क्या करना। लेकिन वात्सल्य है क्या, ऐसा वात्सल्य की दूसरे की विपत्ति देख करके उससे हटना नहीं बल्कि अपने को मुश्किल में डालकर उसके जीवन को आसान करना, ऐसा भाव आता क्या अपने मन में? बहुत मुश्किल है अभी, इसीलिए इस तरह का प्रेम अपने भीतर, इस तरह का साधर्मी के प्रति स्नेह, अपना स्वार्थ जहां होता वहां तो प्रेम होता भैया। ऐसा नहीं है कि जहां हमारा स्वार्थ हो और वहां हमारा प्रेम ना हो, वहां तो होता है। जहां स्वार्थ नहीं है, हम आपको वात्सल्य का उदाहरण देवे तो महाराज जी बाजू में बैठे हुए, मुझे दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी अस्वस्थता के दौरान मैं तो जीवन के अंतिम संलेखना के क्षण में भी याद रखूंगा इस बात को, मुझे कहने में भी जरा भी मुश्किल नहीं होती कि बहुत अधिक अस्वस्थता में और अपने चतुर्मास की स्थापना करके भी 20 किलोमीटर की सीमा रखे हुए थे मैं। शाहपुर में था महाराज का चतुर्मास, वहां हुआ था गढ़ाकोटा में, वहां से चतुर्मास स्थापना के बाद भी अस्वस्थता का समाचार सुनकर के 20 किलोमीटर मुझे सिर्फ देखने आए और 8 दिन रह करके स्वास्थ्य ठीक होने पर पुनः वापिस लौट के। इससे ज्यादा कोई वात्सल्य का उदाहरण हो सकता है क्या? आज हमारे जीवन में भी ये सब होना चाहिए भैया। और प्रेमानुराग किसे कहते हैं, मित्रानुराग किसे कहते हैं? जिसको आप अपना मित्र मानते हैं उसके कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, ये कहलाता है ये मेरा मित्र है, ये मेरा साधर्मी है। भैया बिगड़ रहो है, कैसे कल्याण होगा, इसके लिए चिंतित है। अपने साधर्मी का कल्याण कैसे हो, उसका भी हित कैसे हो, इसके लिए निरंतर चिंतित बने रहना, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना, ये क्या कहलाता है? ये प्रेमानुराग कहलाता है। ये जो रोट छाप प्रेम है उसकी चर्चा नहीं कर रहा, ये बिल्कुल शारीरिक है, इसमें आत्मा का कोई संबंध नहीं है। जिस चाहे से हो जाता, जिस चाहे पे आंख चली जाती है और उससे ही हो जाता कि हमारा आपसे बड़ा प्रेम है। आपका हमसे प्रेम नहीं, हमारे शरीर से है, हमारे कपड़ों से हो सकता, हमारी संपत्ति से हो सकता, आपका हमसे नहीं है ऐसा। हाँ, ये इसलिए उसकी चर्चा, जहां प्रेम शब्द कहूं वहां पर ये घटिया छाप रोट छाप वाला नहीं समझना आप। मैं उस आत्म प्रेम की बात कर रहा हूं, मैं उस आंतरिक लगाव की जिसमें आत्मा का कल्याण होता उस प्रेम की बात कर रहा हूं, उस वात्सल्य की बात कर रहा हूं, जिस जो सम्यक दृष्टि उसके भीतर तो ऐसा उमड़ता है प्रेम वात्सल्य अपने साधर्मी के प्रति कि उसका कल्याण कैसे हो। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको सुनाऊं, मुझे लगता है कि सचमुच हम लोगों का जीवन अभी इन सब चीजों से बहुत खाली है। हमारा जीवन इन सब चीजों से भरा होता तो हमें ये सब चीजें अपने जीवन में प्रकट होती दिखाई पड़ती। एक घटना है, जंगल में घट गई थी। दो हिरण एक पानी के गड्ढे के पास मरे हुए दिखे। दो मित्र जो है वो साथ साथ चले जाते थे और दोनों ने जाके देखा कि अरे इस गड्ढे में थोड़ा पानी है और ये दोनों यहाँ मरे पड़े हैं। कुछ समझ में नहीं आता कैसे इनके प्राण निकल गए होंगे, तो एक दूसरे से पूछता है कि खड़ा न देखे पार दी, लग्या न देखे बाण, मैं तुमसे पूछूं सके दोन्यों किस भी तज्या प्राण। इन दोनों ने अपने प्राण कैसे छोड़ दिए हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खड़ा न दिखे पार दी, यहां कहीं कोई शिकारी दिखता नहीं है। लग्या न दिखे वाण, इनको कोई वाण भी नहीं लगा है, इनको कोई तीर भी आके नहीं लगा, पर दोनों के प्राण कैसे निकल गए? दूसरा चुपचाप देख रहा था, वो मालूम क्या कहता है, नेह घना जल थोड़िया, नेह घना जल थोड़िया, लग्या प्रीति का वाण, तूपी तूपी करत ही दौड़ो तज्या प्राण। जल थोड़ा नेहा घना, बहुत थोड़ा सा पानी था लेकिन भीतर स्नेह बहुत अधिक था। ये प्रीति का वाण दोनों को लग गया तो एक दूसरे से कहते थे कि तुम पहले पी लो, इतना ही सा तो है, तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। मैं तो अपने प्राणों की रक्षा बाद में कर लूंगा, पहले तुम कर लो। और दोनों एक दूसरे की प्राणों की रक्षा में अपने प्राण छोड़ देते हैं। और हम अपने साधर्मी के प्राणों की रक्षा क्या, उसके प्राणों पर भारी पड़ जाते हैं। हम तो लगने लगता है कि उस तिर्यंच पशु से भी ज्यादा कभी कभी गए बीते हो जाते हैं। हमें अपनी दृष्टि निर्मल बनानी चाहिए भैया। जिसकी दृष्टि निर्मल बन जाती है वो अपने साधर्मी के प्रति अच्छा ही व्यवहार करता है, वो अपने साधर्मी से वात्सल रखता है, तभी हमारे धर्म की प्रभावना होती है, हमारे जीवन में भी धर्म आता है। इसके बिना हम कितनी भी प्रभावना कर लें, हमारे जीवन से जब तक धर्म नहीं आएगा तब तक कोई प्रभावना नहीं होगी। हमारे जीवन में जब तक अपने साधर्मी के प्रति वात्सल नहीं आएगा तब तक प्रभावना नहीं होगी। इसी भावना के साथ कि हम सब की दृष्टि निर्मल हो, हमारे जीवन में परस्पर ये सारी बातें एक दूसरे के प्रति वात्सल और प्रेम की हों और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।